الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرفت القرآن کی جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات چل رہی ہیں وہ 7 سے لے کر کے 20 تک ہیں. تو ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، خلاصہ تفسیر مکمل پڑھ چکے ہیں، اور معارف و مسائل میں ہم پیج نمبر 35 کے اوپر ہیں. اور کیا چیز پڑھی تھی آخر میں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہے نا وہ لے کے جا رہے تھے، گویا کہ اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے بڑی منت سماجت کری ان کی کہ تم لوگوں نے تو وعدے کیے تھے، بلکہ بڑے بھائی سے بھی کہا کہ آپ سے تو خوب وعدے لیے تھے میرے والد صاحب نے، آپ کے ابو بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، تو آپ میرے اوپر رحم کریں، میری کمزوری اور صغر سنی کے حال پر آپ رحم کریں، والد کے ذوق پر رحم کریں، عہد کو یاد کریں. تو ان کا جو ہے نا وہ دل نرم پڑ گیا، جن کا نام یہودہ تھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب تک میں زندہ ہوں نا تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن کون سی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ قتل والی تکلیف نہیں پہنچے گی. باقی جو کنویں کے اندر ڈالنا تھا تو وہ بھی کوئی لگژری تو نہیں تھی نا، وہ بھی تو تکلیف ہی تھی، لیکن اس سے روکنا جو ہے وہ ان کے بس سے باہر تھا. حتیٰ کہ ان کے اپنوں نے جو ہے نا، اپنے سگے بھائیوں نے ان کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اگر تم نے نہیں کیا نا ہمیں سپورٹ اور تم نے جا کر کے ہماری شکایت لگائی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے آپ کو کچھ ذرا نقطہ بھی سمجھایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو اگر لکھیں یہاں پر چیٹ ونڈو کے اوپر کہ اس موقع پر کیا نقطہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا پچھلی کلاس میں ٹھیک ہے. تو آپ لکھیں، ہم آگے چلتے ہیں جب تک اگر کسی کو یاد ہو. تو انہوں نے پھر بڑی برائی کی بجائے ایک چھوٹی برائی سجیسٹ کری، کیونکہ بڑی برائی کو روکنا ان کے لیے ان کے بس میں بات نہیں تھی. تو چھوٹی برائی انہوں نے یہ سجیسٹ کری کہ بھائی قتل نہ کرو بلکہ کنویں کے اندر ڈال دو، اور ان کو جو ہے نا وہ کوئی قافلے والا جو ہے وہ لے جائے گا. تو اس چھوٹی برائی پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا ٹھیک ہے، جس کا بیان آیات مذکورہ میں سے تیسری آیت میں اس طرح آیا ہے ٹھیک ہے. تو یہ نقطہ میں نہیں آپ سے پوچھ رہا، میں کوئی اور نقطہ پوچھ رہا ہوں، چھوٹی برائی بڑی برائی والا نقطہ نہیں ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور بھی نقطہ تھا، وہ کیا تھا ٹھیک ہے؟ کسی کو یاد؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وہی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے کرتوت پر تنبہ کرو گے یا تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے. ماشاءاللہ، کسی ایک کو بھی یاد نہیں آ رہا وہ نقطہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان میں سے ایک سوتیلے بھائی نے اپنے سگے بھائیوں کو، باقی 9 کو کہا کہ بھائی تم یہ مت کرو یوسف کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کے خلاف ہو گئے، اپنے سگے بڑے بھائی کے خلاف ہو گئے. تو کیا تھا یہاں پہ ہمارے لیے ٹیک ہوم پوائنٹ؟ کوئی تھا؟ نہیں تھا، ایسے ہی بس کہانیاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قصص احسن القصص پڑھ رہے ہیں قصے کہانیوں کے لیے ٹھیک ہے. تو بھائی آپ نے تو لکھا نہیں، اس کا مطلب ہے کسی ایک نے بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے نا. اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے پوائنٹ لکھا ہوتا تو آپ کے پاس جواب موجود ہو ٹھیک ہے. بہرحال ہمارا کام ہے کرنا بتانا، آپ کا کام ہے ماننا نہ ماننا، آپ کی مرضی. تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ اوحینا فلما ذهبوا کی جزا اور جواب ہے फलम्मा जहबू, कि जब वो लेकर के चले उनको, जहबू बिही, ठीक है, जहब जहबा के बाद जब बी का लफ्ज, जब हर्फ जर बा आ जाता है, तो बा आने से जो है ना वो जहबू का तर्जुमा वरना तो जाना होता है, लेकिन बा आ जाने के बाद उसका तर्जुमा बन जाता है ले जाना, किसी के साथ यानी किसी को ले जाना, ठीक है। तो जब वो ले गए उनको सारे के सारे, ठीक है, तो क्या हुआ कि हर्फ वाव इस जगह जायद है, वाव है ना, में वाव जो है वो हर्फ यानी हर्फ जायद है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड वर्ड है। मतलब ये है कि भाइयों ने मिलकर कुएं में डालने का अजम कर ही लिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए वही भेज दी जिसमें किसी आइंदा जमाने में भाइयों से मुलाकात की और इसकी खुशखबरी दी गई है कि उस वक्त आप उन भाइयों से मुस्तगनी और बालादस्त होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके इस जुल्म सितम पर मुआखजा करें, ठीक है। यानी एक वक्त आएगा कि जब आपका हाथ ऊपर होगा, अभी तो आप सबसे नीचे हैं ना और बाकी सारे भाइयों का हाथ आपसे ऊपर है, लेकिन उस दिन आपका हाथ बाला दस्त दस्त आपका ऊपर होगा, बाला होगा, ठीक है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने तो याद रखा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जो जवाब दिया है यही सही जवाब है कि जो नफ्स का गुलाम हो जाता है ना वो किसी का नहीं रहता, किसी का नहीं रहता, अपने सगों का भी नहीं रहता, दूसरों का तो क्या, अपना भी नहीं रहता, दूसरों का तो क्या, अपना भी नहीं रहता। और इसके ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी तो किसी ने सुनी है ना, तो हम क्या, किस खेत की गाजर मूली है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किसी ने नहीं सुनी भाई, जिनको सब जो है वो शायर मशरक बोलते हैं, ठीक है। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को सब जो है वो हकीम उल उम्मत बोलते हैं, लेकिन उनकी किसने सुनी, उनकी भी नहीं सुन के दी। तो हम क्या किसी से शिकायत करें, क्या किसी से शिकवा करें कि हमारी नहीं सुनते, ठीक है भाई। हम अब ये सुनने वाली सिफत पैदा कर लें तो फिर हमारा ही फायदा नहीं, पैदा करेंगे तो किसी और का नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है। तो माशाल्लाह सुनने वाले एक आध निकल आते हैं तो फिर हम जैसे कमजोरों को भी थोड़ी सी ढारस मिल जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक शेर भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आप लोगों को सुनाया था कि पानी पानी कर गई मुझको, क्या थी, कलंदर की ये बात, पानी पानी मुझ कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर अपना नहीं बनता न बन, मेरा तो बन, नहीं मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, ठीक है, अपना ही नहीं बनता तू, तो जो है वो ऐसा नफ्स का बना है यानी ऐसा शैतान का बना है, क्योंकि नफ्स तो बेवकूफ सा बच्चा होता है खाली, तो वो तो शैतान उसकी डोरें खींच रहा होता है, ठीक है। तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन भाई, अपने का अपना तो खैर ख्वाह हो, लेकिन तू तो शैतान का बन के रह गया है, तू तो शैतान का बन के रह गया जो कि तेरा दुश्मन है, ठीक है। वही हम जो है वो अपने मशाइख के साथ ही उल्लू यानी उल्लू का खेल, क्या कहते हैं, चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें फिर उसके बाद, बहरहाल तो फरमाते हैं कि किसी, तो उस वक्त ना तुम बालादस्त हो गए, तो जिसकी वजह से उनके जो यानी तुम्हारा अपर हैंड होगा उस वक्त, तो तुम उनके साथ मुआवजा करोगे, यानी तुम उनसे पूछोगे कि व्हाट डिड यू डू टू मी, व्हाई डिड यू डू इट टू मी, ठीक है। और वो इस सारे मामले में बेखबर होंगे और वो बिल्कुल, दे विल बी टेकन बाय सरप्राइज, दे विल बी टेकन बाय सरप्राइज, उनको उनके वहम गुमान भी नहीं होगा कि तुम उनसे मुआवजा करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ बाद में जाकर के, इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक ये कि ये वही उनको कुएं में डालने के बाद उनकी तसल्ली और यहां से निजात की खुशखबरी देने के लिए आई हो, दूसरी ये कि कुएं में डालने से पहले ही अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश आने वाले हालात व वाकयात से बजरिए वही बाखबर कर दिया, ठीक है। तो या इस टाइम पर आई या उससे पहले आ गई, ईदर वे इससे कोई मसले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें यह भी बतला दिया कि आप इस हलाकत से सलामत रहेंगे और ऐसे हालात पेश आएंगे कि आपको इन भाइयों पर सरजनिश करने का मौका मिलेगा, जबकि वो आपको पहचानेंगे भी नहीं कि उनके भाई, कि आप उनके भाई यूसुफ हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना दिल में ये बातें डाल देते हैं कि इत्मीनान, ये देखिए इत्मीनान कल्ब जो है ना ये ईमान के साथ है, अल्लाह के जिक्र के साथ है, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया ना कि दिलों को इत्मीनान है अल्लाह की याद के साथ, ठीक है। तो अब ये इत्मीनान जो है ना, इसके अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं। असबाब कैसे पैदा करते हैं कि इंतहाई मुश्किल सिचुएशन जो है ना, वो उसका पहले से बता देते हैं कि डोंट वरी, यू विल बी फाइन, यू विल बी सेफ, ठीक है। तो ये भी तो दिल के इत्मीनान का एक सबब है, ठीक है। और या कोई और बुरहान दिखा देते हैं, कोई और चीज समझा देते हैं, कुछ और जो है वो आइडिया दिल में आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा जो है ना, जो कि सख्त सख्त परेशान हो सकता था उस सिचुएशन के अंदर, लेकिन उसका दिल मुतमईन हो जाता। खैर है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इत्मीनान का अल्लाह ताला ने सबब कर दिया कि भाई उनको जो है वो इल्हाम फरमा दिया। अच्छा, अब ये इल्हाम था कि ये वही थी, तो उसके ऊपर हजरत फरमाते हैं कि ये वही जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जमाने तुफूलियत में नाजिल हुई, क्योंकि औहैना, हमने वही करी उनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें तो वही का लफ्ज है, तो ये जमाने तुफूलियत के अंदर यानी तिफल थे, छोटे बच्चे थे। तो तफसीर मजहरी में है कि ये वही नबुवत नहीं थी, जो नबियों को वही आती है वो वाली वही नहीं थी, क्योंकि वो तो 40 साल की उम्र में अता होती है, जब नबी को मबरूस कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है कि जी अब आप जो है ना, वो यानी अपॉइंटेड हो गए इस हाईएस्ट पोजिशन के ऊपर। बल्कि ये वही ऐसी ही थी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बजरिया वही मुतला किया गया था, वाउहैना इला उम्मे मूसा फारिगा। ये आयत अगर मैं गलत पढ़ूंगा, माज़रत, यानी उम्मे मूसा की तरफ जो है वो हमने वही फरमाई थी। तो उम्मे मूसा जो है वो नबी को थोड़ी थी, सूरह ताहा के अंदर हम पढ़ चुके हैं इसको, और उसी तरह से क्या है, सूरह नहल के अंदर जो है वो शहद की मक्खी की तरफ भी वही, ठीक है ना। तो शहद की मक्खी जो है वो कौन से नबी होती है, वो तो इंसान भी नहीं होती। तो ये वाली क्या चीज है, ये वही नहीं है, वही बमाने इल्हाम है ये, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं, या कोई दिल में एक आइडिया आ जाना। वो आइडिया कहाँ से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही नबूवत का सिलसिला अन अरदी जजाकुमुल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये जो वही नबूवत का सिलसिला मिस्र पहुंचने और जवान होने के बाद शुरू हुआ, जैसे कि इरशाद है, वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मा इल्मा, ठीक है, कि जब वो अपनी पावर वाली टाइम पे पहुंच गए ना, अशुद्ध यानी शदीद हो गए, मतलब पावरफुल हो गए, यानी मेच्योर हो गए, और 40 साल की उम्र जो होती है वो यानी इंतहाई मेच्योरिटी होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। फिजिकल मेच्योरिटी जो है ये कोई 33 ईयर्स की एज में, 33 ईयर्स, ठीक है, फिजिकल मेच्योरिटी। जन्नत में जब जाएंगे तो वहां पर सबकी उम्र क्या होगी, 40 साल होगी या 33 साल होगी। जन्नत में 40 साल उम्र नहीं होगी, क्योंकि जन्नत में जो है ना वो इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, ठीक है, तो आप जो है वो सारे लोग जो है जन्नत में इंटेलेक्चुअली मेच्योर हालत में हैं, तो आपस में जो है वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो रही हैं सियासत के ऊपर, और जो है वो दूसरे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं जन्नत में। नहीं, जन्नत में जो है ना फिजिकल मेच्योरिटी है, फिजिकल मेच्योरिटी की एज में जो है वो मर्दों को जन्नत में डाला जाएगा, और फिजिकल मेच्योरिटी की एज जो औरतों की होगी उसमें औरतों को जन्नत में डाला जाएगा, यानी सबको एक एज पे कर दिया जाएगा, ठीक है, वो फिजिकल मेच्योरिटी वाली एज होगी। जन्नत में इंटेलेक्चुअलिटी बस जो है सो है, ठीक है ना, वहां पे कोई इंटेलेक्चुअलिटी के मजे को थोड़ी, वो तो कर लिया आपने इंटेलेक्चुअलिज्म की बुनियाद पर दुनिया के अंदर आपने नेकियां कमा ली, ईमान लेकर के आ गए, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, ठीक है। अब जन्नत में जाकर के तो भाई आपने फिजिकल मजे करने हैं, जिससे कि इस दुनिया में महरूम रहे थे ईमान वाले, है ना, फिजिकल मजे इस दुनिया में नहीं किए ईमान वालों ने, ठीक है ना, या जितना कर सकते थे उतने नहीं किए, किए थोड़े बहुत किए, लेकिन जितना कर सकते थे उतने नहीं किए। तो जन्नत में उसकी कॉम्पनसेशन होगी, और जन्नत में पहुंचने के लिए जिस इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी की जरूरत थी वो तो दुनिया में हो चुकी, खत्म, खलास, ठीक है ना, अब बस जैसे हैं वैसे वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि वहां पे जाके नाउज बिल्ला फिजिकली तो मेच्योर होंगे लेकिन इंटेलेक्चुअली जो है वो बिल्कुल इमेच्योर होंगे, नहीं, ये मतलब नहीं है कि इंटेलेक्चुअली इमेच्योर होंगे वहां पर, ठीक है, लेकिन वहां पे इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब वो तो रिक्वायरमेंट है दुनिया की। अच्छा, तो फरमाते हैं कि जैसे कि इरशाद है, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मा व इल्मा, तो ये जो नबुवत मिली उसको, नबुवत को यानी हुक्म और इल्म, ठीक है, इससे जो है ना वो ताबीर किया अल्लाह ताला ने, ये नहीं फरमाया कि हमने उनको नबी बना दिया, नबूवत हमने उनको अता कर दी, बल्कि हुक्म और इल्म अता किया। इब्ने अभी हातिम वगैरह ने इसको इस्तिस्नाई तौर पर वही नबूवत ही करार दिया है। कुछ ये इल्मी इख्तलाफ होते हैं, तो इब्ने अभी हातिम रहमतुल्लाह बहुत बड़े जो है वो ताबी बुजुर्ग गालबन, तो उन्होंने इल्मी इख्तलाफ किया, उनके कोई होंगे रीजन इसकी, कुछ दलाइल वगैरह होंगे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में नबूवत अता की गई थी, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम वाज एन एक्सेप्शन इन इन मेनी मेनी वेज, ठीक है ना, ना शादी करी, हर नबी ने शादी करी, ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी उस वक्त नहीं करी, बाद में वापस आएंगे तो करेंगे, ठीक है। उसी तरह से उनको नबूवत जो है वो 40 साल की उम्र से पहले, क्योंकि 40 साल तो वो पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही उनको उठा लिया गया ऊपर, और रूहुल्ला है, बाकी कोई जो है वो रूहुल्ला नहीं है, बाप के बगैर पैदा हुए, बाकी कोई जो है वो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के अलावा बाकी कोई भी जो है वो बाप के बगैर पैदा नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम की क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। दज्जाल से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने किसी नबी को पसंद नहीं किया, ईसा अलैहिस्सलाम को रखा है दज्जाल से लड़ने के लिए, भी तो एक एक्सेप्शन है ना, ठीक है। बहरहाल उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी एक्सेप्शनली जल्दी वही मिल गई नबूवत वाली, लेकिन बाकी सबने इससे यानी इत्तेफाक नहीं किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि मिस्र पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदलिया वही इस बात से मना कर दिया था कि वो अपने हाल की खबर अपने घर भेजें, ठीक है। यही वजह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर खुदा ने जेल से रिहाई और मुल्क मिस्र की हुकूमत मिलने के बाद भी कोई ऐसी सूरत नहीं निकाली जिसके जरिए वालिद ज़ईफ को अपनी सलामती की खबर देकर मुतमईन कर देते हैं। तो वालिद को मुतमईन कर देना जबकि उनके पास अथॉरिटी थी, सारे वसाइल थे, कोई बहुत दूर तो नहीं थे, ये सारा का सारा प्ले किधर हो रहा है, छोटे से एरिया के अंदर, मिस्र भी वहीं पर है और ये जो है वो कनान भी वहीं पर है और फलस्तीन भी वहीं पर है और सब कुछ तो इधर ही है, यानी लोग वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब उस जमाने के लोग जो है वो तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर उन चीजों को समझते होंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म, ठीक है। तो इस वजह से ये जायज और बल्कि अच्छा काम था, वो भी अल्लाह के हुक्म से उनको मना कर दिया गया, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये जो बला अशुद्दहु आतेना हुक्म व इल्मा, इसकी तफसील नहीं लिखी हुई कि एग्जैक्टली ये कौन सी वाला टाइम था। ये अजीज मिस्र और जुलेखा के घर के अंदर जब वो थे उस वक्त उनको ये नबूवत मिल गई थी, या उनको ये नबूवत जो है वो जेल खाने में जाकर के मिली थी, लेकिन इतना कम से कम कंफर्म है कि जेल खाने में जब थे ना वहां पर तो नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन वो उसी वक्त मिली थी या उससे पहले मिल चुकी थी, ठीक है। तो उसमें अल्लाह आलम किसी किताब में अगर लिखा होगा तो उसको इस आदमी ने देखा नहीं है। आगे फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू की हिकमतों को कौन जान सकता है जो इस तर्ज में मख्फी थी, यानी छुपी हुई हिकमतें थी। शायद ये भी मंजूर हो कि याकूब अलैहिस्सलाम को गैरुल्ला के साथ इतनी मोहब्बत के नापसंद होने पर मुतनब्बह किया जाए, ठीक है, कि उनको जो है ना वो ये तबी मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो गई थी, तो मुमकिन है कि ये इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजरों से ओझल कर दिया गया और ओझल रखा गया इतने लंबे अरसे के लिए अल्लाह ताला को ना। और हमने अपने मशायख से भी यही सुना कि यानी ये कोई हराम काम नहीं था अपने बेटे से मोहब्बत करना, लेकिन जो उलुल अजम लोग होते हैं तो उनके लिए जो है ना वो जो 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 आम लोगों के लिए जो जायज और बिल्कुल ही नॉर्मल मामला होते हैं, बड़ों के लिए जो है ना उसके ऊपर भी पकड़ हो जाती है। क्या है वो मुझे एक बशायर के नजदीक मिसरा हमारे जो भी इस्तेमाल करते हैं, सैयातुल अबरार यानी जो आम लोगों की नेकियां होती है ना, आम लोगों के लिए जो नेकियां होती है ना, तो वो अबरार के लिए जो बहुत जो सबसे बुलंद मर्तबा है अबरार का, तो उनके लिए जो है ना वो सैयात होते हैं, यानी तुम ये आम आदमी वाली नेकी के ऊपर तुम गुजारा कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए गुनाह है कि तुम इस नेकी के ऊपर, तुम्हें तो बहुत ही उलुल अजमी का मुजाहरा करना चाहिए था, ठीक है। अल्फाज जहन में नहीं आ रहा है, किसी में आपको याद हो तो। तो फरमाया क्या कि शायद इसकी वजह यह हो कि उनको मुतनब्बे किया जाए इसके ऊपर कि क्यों आपने इतनी मोहब्बत करी अपने सगे यानी अपने सलबी बेटे के साथ। और ये कि भाइयों का हाजतमंद बनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश करके उनके अमल की कुछ सजा तो उनको भी देना मकसूद हो। हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, अबरार की जो जो हसनात होती है ना वो मुकर्रबीन की सैयात होती है। तो अबरार से यहाँ पे मुराद वो जो मैंने कहा वो गलत कहा, तो यहाँ पर अबरार से मुराद नेक लोग। ठीक है, बिर करने वाले, बिर कहते हैं नेकी को। तो अबरार वो लोग होते हैं जो कि नेकिया करने वाले लोग होते हैं यानी सालिहीन। ठीक है, मुकर्रब जो बंदे होते हैं उनके तो गुनाह कहलाए जाते हैं। इमाम कुर्तुबी वगैरह मुफस्सरीन ने इस जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया ये बयान किया है कि जब उनको डालने लगे तो वो कुएं की मन से चमट गए, चिमट गए। ठीक है, तो मन जो है वो जो उसकी जो यानी बाउंड्रीज थी उसकी बाहर की, जो जैसे ग्लास की एक मन होती है ऊपर, तो भाइयों ने ना उनका कुर्ता निकाल कर उससे हाथ बांधे। उस वक्त फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की। एक तो कुर्ता वो था जो कि वहां लेकर के गए बाप के पास, ठीक है ना, और यहाँ पर किस कुर्ते की बात हो रही है जिससे कि उनके हाथ बांध दे। ठीक है, तो वो लगता है कोई एडिशनल कोई क्लॉथ था उनके ऊपर के जिसको गए उनके हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की अपील की, दरख्वास्त की, मगर वही जवाब मिला कि 11 सितारे जो तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रखकर कुएं में लटकाया। ये वाला ताना वो पहले भी दे चुके थे जब लेकर के आ रहे थे यहाँ पर, ये सितारों को बुलाओ ना वो तुम्हारी मदद करें। तो जब निसफ तक पहुंचे तो उसकी रस्सी उन्होंने काट दी। अल्लाह ताला ने अपने यूसुफ की हिफाजत फरमाई, पानी में गिरने की वजह से कोई चोट ना आई और करीब ही एक पत्थर की चट्टान निकली हुई नजर आई। सही सालम उस पर बैठ गए। बाज रिवायात में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, उन्होंने चट्टान पर बिठा दिया। ठीक है, तो ये कुछ रिवायात में मेरे ख्याल में फजाइल अमाल के अंदर भी शायद ये वाली रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की स्पीड कितनी है, स्पीड, ये स्पीड बताने के लिए। ठीक है, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया ना उन लोगों ने अंदर, यानी फेंका भी नहीं, जिसके इस रिवायत के मुताबिक तो हाफ वे तो रस्सी से लटकाया, सिर्फ हाफ वे उनको जो है वो ग्रेविटी के ऊपर छोड़ा। ठीक है ना, रस्सी काट दी तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त इनको हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि यूसुफ को गिरने मत देना, चोट ना लग जाए उसको। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेकर के साथ में आसमान से कुएं के गहराई में पहुंचे और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद में ले लिया कि नीचे गिर करके चोट ना लगे। तो ये उनकी स्पीड है ना। और इनकी स्पीड के लिए एक और मिसाल दी जाती है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया उस मंजनीक से, हवा में छोड़ दिया गया ना, फेंक दिया गया, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यूसुफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतनी देर के अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछ के जा रहे हैं, डू यू नीड माई हेल्प? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है ना, तो किसने तुम्हें भेजा? मुझे जो है वो अल्लाह ने भेजा। डू है ना, कैन आई हेल्प यू? नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतनी स्पीड जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, और ये जो स्पीड है ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की स्पीड जो है वो इन वाकयात से क्यों बताते हैं, वो दरअसल एक और हदीस है उसके लिए बताते हैं ये स्पीड। वो क्या हदीस है कि एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह आपकी जन्नत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है? तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ जन्नत के अंदर जा करके जो है ना वो तुम खुद देख लो कितनी बड़ी है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना जन्नत में गए और अपने जो 600 पर उनके है ना वो उड़ना शुरू हो गए जन्नत के अंदर, देख रहे हैं जन्नत, देख रहे हैं जन्नत, देख रहे हैं जन्नत, जन्नत खत्म नहीं होके दे रही, खत्म नहीं होके दे रही, खत्म नहीं होके दे रही, हत्ता के थक गए, उड़ उड़ करके थक गए है ना अल्लाह ताला के पास पहुंचे। अल्लाह ताला आपकी तो जन्नत खत्म होने का नाम नहीं दे रही, नाम नहीं ले रही आपकी जन्नत खत्म होने का। ठीक है ना, मैं तो थक गया उड़ उड़ करके, देख देख करके। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया जिब्राइल तुमने तो अभी तक मेरे सिद्दीक अकबर की जन्नत पूरी नहीं देखी, तुमने तो अभी तक मेरे सिद्दीक की जन्नत पूरी नहीं देखी। ठीक है ना, तो सिद्दीक अकबर की जन्नत, अगर ये रिवायत जो है वो सही है और है सारे हदीस के उनको, लेकिन सही हो या ना हो जन्नत का जो साइज है ना ये ऐसा ही है, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस फकीर को तौफीक दी कि बच्चों की जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास होती है उसके अंदर जो है ना, वो अपने हजरत के मशवरे और इजाजत से इस आजिज ने जो है वो बल्कि एक बच्ची से ही बनवाया है ना, तो और बनवा करके जो है ना वो बच्चों को सबको दिखाया कि देखो जन्नत कितनी बड़ी है, ठीक है ना, और कैसे हम इसको कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो वो जो समझाया है उससे तो हमें तो यही मतलब कि सारे उसने भी तो दायरे पहली दफा ये सोचा इस तरीके से, तो वो इतनी बड़ी है कि वी कैन नॉट फैथम, है ना, जितने आपके गैलेक्सीज हैं, जितने आपके जो है वो ये फिजिकल यूनिवर्स है, वो सारी की सारी पहले आसमान से पहले है, फिर उसके बाद पहला आसमान शुरू होता है, फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरा आसमान शुरू होता है, फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और हर आसमान के दरमियान जो है वो 500 साल की मुसाफत है। 500 साल की मुसाफत ऑन फुट तो नहीं हो सकती, 500 पैर के ऊपर चलना तो बहुत ही थोड़ी सी मुसाफत लगती है, 500 साल तक बंदा पैर पे चलता रहे। जो भी है नबी अलैहिस्सलाम फरमाया 500 साल की मुसाफत हर दो आसमानों के दरमियान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर जब पूरी की पूरी आपकी यूनिवर्स पहले आसमान के अंदर आ गई, तो पहले आसमान के बाद दूसरा आसमान तो पहले आसमान से भी बड़ा है ना, क्योंकि उसने पहले आसमान को घेरा हुआ है, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, इमेजिन करें सातवां आसमान कितना बड़ा होगा, और ये जन्नत जो है ये सातवें आसमान के ऊपर है, ठीक है। तो अब सातवां आसमान जितना बड़ा है तो भाई हमारे हिसाब से तो वही है ना कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब कोई मोमिन कोई फलानी नेकी करता है, असल में ये हदीस ही इसकी वजह बनी थी, इस पूरी की पूरी जो सोच थी ना कि जन्नत कितनी बड़ी है, ये हदीस बनी थी, हमने अपने हजरत से सुनी। हमारे हजरत हैं साइंटिस्ट किस्म के आदमी, ठीक है ना, मैथमेटिशियन, साइंसदान, ठीक है, तो वो हर चीज में ना उनकी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। तो वो हदीस मुबारका के अंदर जो है वो एक घोड़ा जो है ना वो अच्छा, वो जब मोमिन जो है वो नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं, उस दरख्त का साया इतना लंबा है कि अगर कोई घोड़ा 80 साल तक दौड़ता रहे ना तो वो उस साये की इंतहा तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अब इस फकीर का भी एक मिजाज है कि भाई ये लोग जो है वो क्या सोचेंगे इसके बारे में, और कहेंगे यानी लोग इसको, यानी आजकल जो जो तालीमी निजाम ने हमारा मिजाज बनाया हुआ है, तो अब इन चीजों को हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो मैंने कहा भाई ये लोग सुनते हैं बच्चे खासतौर पर, दिस इज नॉट, दिस कैन बी रियल, ये बस ऐसी बस है ना, यानी अजीब गरीब किस्म की बातें हैं ना। मैंने कहा नहीं, जरा प्रूफ करते हैं कि 80 साल तक दुनिया का एक घोड़ा दौड़ता रहे, दुनिया का एक घोड़ा जो है उसकी हैसियत क्या है, 80 साल तक दौड़ता भी रहेगा तो कितना फासला तय कर लेगा। तो ये जो एक दरख्त 80 साल की घुड़ दौड़ के से बड़ा है ना, जन्नत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, जन्नत में इस तरह के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जो है ना वो दरख्त होंगे और वो जन्नत खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। अलहमदुल्ला तो अल्लाह ताला को दूर फरमा ले बस। अच्छा, इसके बाद फिर फरमाया कि तो वो जो है ना वो बैठ गए उस पत्थर के ऊपर। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 रोज इस कुएं में रहे, उनका भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। वह जाऊ अबाहु इशाई यबकून, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका मफहूम है कि इशा के वक्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके रोने की आवाज सुनकर बाहर आए, पूछा क्या क्या हादसा है, क्या तुम्हारी बकरियों के गले पर किसी ने हमला किया है जो तुम ये रो रहे हो, ठीक है, और यूसुफ कहाँ है। तो भाइयों ने कहा या अब्बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकू, है हम तो जो है ना वो एक दूसरे सब सब सबकत ले आने की वहां पे घुड़दौड़ का मतलब, हम तो वहां पे दौड़ का मुकाबला कर रहे थे, ठीक है। वह तरक ना यूसुफ इंदा मता है ना, हमने यूसुफ को छोड़ा अपने सामान वगैरह के पास, अकल हो जेब, भेड़िया आया बस उसने जो है उसको खा लिया। वमा अंत बिमुमिनिन वलव कुन्ना सादिकीन, और आप कहाँ हमारी बात पे ट्रस्ट करने वाले हैं, हालांकि हम तो सच्चे हैं, ठीक है। मुमिन लफ्ज मुमिन इस्तेमाल किया किस चीज के लिए, आप हमारी बात पर एतमाद करने वाले कहाँ हैं। तो कुरान मजीद से हमें ईमान की क्या तारीफ मिलती है, जो कि है भी यही तारीफ, सिर्फ इस आयत से नहीं प्रूव होती बल्कि हर जगह से प्रूव होती है कि ईमान का मतलब यही है क्या है? एतमाद, अनदेखी चीज पर एतमाद, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम वाज नॉट देयर, ही वाज नॉट देयर टू विटनेस, ठीक है ना, ये खबर दे रहे थे आकर के, ना आप हमारी अनदेखी जो खबर हम आपको देख रहे हैं, दे रहे हैं आपको, आपने कहाँ एतमाद करना है उसके ऊपर, ठीक है ना, आप तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो ईमान तो एतमाद का नाम है, और अगर वही बात, हमारा मामला क्या है कि हम अपने आप को मोमिन कह देते हैं लेकिन हमें एतमाद नहीं होता किसी बात के ऊपर, ठीक है ना। हम एतमाद जो है ना वो गोरों पे कर रहे होते हैं, एतमाद जो है वो चाइनीज के ऊपर कर रहे होते हैं, एतमाद जो है वो अमीरों के ऊपर कर रहे होते हैं, एतमाद जो है वो जिनके पास कोई भी मस्कुलर पावर होती है या इंटेलेक्चुअल पावर होती है, या कोई और किस्म के उन्होंने कोई तोप वाला काम कर दिया होता है दुनिया के अंदर, हमारा फौरन उनके ऊपर एतमाद बन जाता है, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातें और अल्लाह ताला के बताए हुए वादे, हम एतमाद नहीं करते उन वादों के ऊपर, ठीक है ना। अगर एतमाद कर रहे होते तो भाई कुछ तो हमारे अमल में उसका असर नजर आ रहा होता है ना। तो इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जो ईमान की डेफिनेशन है ना वो एतमाद ही तो है, कि आपने इकरार किया कि नहीं मैं एतमाद करता हूँ, जो कुछ फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने वो सच है और अपने दिल से भी उसकी तस्दीक करता हूँ, ठीक है। अब अमल में कोताही होना ये एक अलग चीज है, लेकिन एतमाद ये कोई हाथ से आप एतमाद नहीं करते किसी चीज के ऊपर, आप पैर से एतमाद नहीं करते, है ना, आप सर से एतमाद नहीं करते, जैसे माशाल्लाह हमारे दक्कन के भाई है ना, वो सर से एतमाद करते हैं ऐसे करके, सर हिला हिला करके, नहीं, इस सर से कोई एतमाद नहीं होता, ये आपका स्टाइल है बोलने का, शो करने का, है ना। कुछ लोग जो है वो सीधा सर 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 हिलाते हैं, कुछ लोग साइड साइड से सर हिलाते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन एनीथिंग इन रियलिटी। एतमाद तो दिल की चीज है, अंदर की चीज है, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, सर हिला रहे हो, आंखें हिला रहे हो, जो भी हिला रहे हो, अंदर आपके एतमाद नहीं है, खलास, कोई फायदा नहीं आपके सर हिलाने का और पैर हिलाने का, ठीक है ना। क्योंकि एतमाद जो अमल है ये दिल का अमल है, ये हाथ पैर और आंखों और सर का अमल नहीं है, ठीक है। और ये दिल का हाल अल्लाह ताला जानता है, आपके शेख साहब के सामने आप कुछ भी करते रहे, शेख साहब को क्या पता आपके दिल में क्या है, अल्लाह ताला को सब पता है कि दिल में क्या है। तो फरमाते हैं कि जी हमने आपस में दौड़ लगाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया, उस दरमियान में यूसुफ को भेड़िया खा गया, और हम कितने ही सच्चे, आपको हमारा यकीन तो आएगा नहीं। इब्ने अरबी ने अहकाम कुरान में फरमाया कि बाहमी मुसाबिकत दौड़ शरीयत में मशरू और अच्छी खसलत है जो जंगो जिहाद में काम आती है, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनफ्स नफीस खुद भी मुसाबिकत करना अहादीसे सहीहा में साबित है, और घोड़ों की मुसाबिकत करवाना यानी कंपटीशन जो इसको कहते हैं, ठीक है, कंपीट करवाना किसी टूर्नामेंट में, किसी मैच मैच की जो फॉर्म्स हमारे यहाँ कहा जाता है, यानी घुड़दौड़ भी साबित है, ठीक है, मुसाबिकत, घोड़ों की मुसाबिकत करवाना भी साबित है। सहाबा कराम में सलमा रज़ियल्लाहु अक्वा ने एक शख्स के साथ दौड़ में मुसाबिकत की, तो सलमा रज़ियल्लाहु गालिब आ गए, ठीक है। सलमा रज़ियल्लाहु कुदरतन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में पिछले दिनों बड़ा तस्करा रहा, गजवा खैबर के अंदर और गजवा खंदक के बाद के जो वाक़े आते हैं उनमें ये बड़े प्रोमिनेंट सहाबी नजर आते हैं। आयात मस्कूरा और उन इन रवायात से असल घुड़दौड़ का जायज होना साबित है, और घुड़दौड़ के अलावा दौड़ में तीरंदाजी के निशाने वगैरह में भी, यानी अलावा घुड़दौड़ के अलावा दौड़ में तीरंदाजी के निशाने वगैरह में भी बाहिमी मुकाबला और मुसाबिकत जायज है, और इस मुसाबिकत में गालिब आने वाले फरीक को किसी तीसरे की तरफ से इनाम देना भी जायज है, ठीक है ना, यानी मुसाबकत करवा करके फिर उसके ऊपर इनाम रखना ये भी जायज है, लेकिन आपस में हार जीत की कोई रकम बतौर शर्त ठहराना जुआ और कमार है, ठीक है, शर्त ठहराना कि अगर ये जीत गया तो, अगर ये जीत गया तो यानी इसको इतने पैसे क्या कहते हैं ये देगा, और अगर वो जीत गया तो इतने पैसे ये देगा, ठीक है, या ये कि जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो तमाशबीन बैठे हुए हैं वो शर्त लगा लें कि अगर ये वाली टीम जीत गई ना तो तुम मुझे इतने पैसे दोगे, और अगर वो वाली टीम जीत गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है, ये अलग चीज है, और उसको इनाम देना प्राइज देना अलग चीज है, ठीक है, तो प्राइज देना जो है ना वो जायज है इस तरह की कंपटीशन के ऊपर, लेकिन शर्त लगा करके इस तरह से, हत्ता कि किताब यानी आपस में भी, जैसे कि आमतौर पर हमारे यहाँ तो ये मतलब कुछ कुछ पता नहीं होता, और शरीयत के ना तो पता करते हैं ना पहले से पता होता है। जी क्रिकेट टीम हो रही है तो टीम ए जो है ना वो टीम बी, तो दोनों का अच्छा जी ये टीम ए अगर जीत गई ना तो टीम बी वाले जो है वो टीम ए को कोक पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, और अगर टीम बी जीत गई तो ये वाले जो है वो उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है, ठीक है। और स्पेक्टेटर्स में तो बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो जो है वो शर्त तो जुआ सट्टा, ये तो आजकल सारे टूर्नामेंट्स के अंदर होता है क्रिकेट समेत, जिसको कुरान करीम ने हराम करार दिया। आजकल जितनी सूरतें घुड़दौड़ की राइज हैं वो कोई भी जुए और कुमार से या कुमार से खाली नहीं है, इसलिए सब हराम व नाजायज हैं। अब चूंकि घुड़दौड़ जो है ना ये घोड़ों का ताल्लुक अब जिहाद के साथ तो है नहीं, अब तो कोई घोड़े पे बैठ करके, तो अब जो घुड़दौड़ होती है सिर्फ शौक के लिए होती है, ठीक है ना। जहां भी दुनिया के अंदर आपको ये क्या कहते हैं उसको स्टेडियम्स होते हैं, उनका खास नाम होता है ना, क्या कहते हैं स्पीड ट्रैक, या तो जॉकी क्लब्स होते हैं, लेकिन एक और भी एक होता है ट्रैक रेस कोर्स, जी जजाकुल्ला। तो ये रेस कोर्सेज जो होते हैं ना सारे यहाँ पे यही जुआ सट्टा हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अब ये खाली एक शौक। अच्छा, शौक जो है वो घोड़े पालना नाजायज नहीं है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी घोड़े पालना, आज भी अगर किसी को अल्लाह ताला ने दिया है तो वो आप की सुन्नत पर अमल करते हुए घोड़े पाल सकता है, ठीक है ना, अगरचे कि उसने कोई जिहाद विहाद में इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन घोड़े पाल सकता है, ठीक है ना। ये मसला नहीं है, मसला उनको ये घुड़दौड़ के अंदर ये शर्तों वर्तों के साथ जो है ना, भाई पालेगा तो घुड़दौड़ भी कर सकता है, लेकिन जो राजे है घुड़दौड़ है पूरी दुनिया के अंदर वो सट्टे के बगैर नहीं होती, ठीक है। रेस ट्रैक्स कहते हैं एक्चुअली, रेस कोर्स कहते हैं हम पाकिस्तान में, रेस कोर्स कहते हैं अमेरिका शमेरिका में, रेस ट्रैक्स कहते हैं। तो आपने क्या लिखा है, उन्होंने वही उजर क्यों पेश किया जिसका डर था याकूब अलैहिस्सलाम को, कुछ और भी तो कह सकते थे, अकल पर पट्टी पड़ जाना नफ्स परस्ती की वजह से। हाँ मतलब उन्होंने वही उजर पेश किया क्या कहते हैं हाँ मतलब हमें तो यही समझ में आता है कि कोई और बहाना भी नहीं किया, बहाना भी वही किया जिससे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे डर है कि भेड़िया खा जाएगा, ठीक है। तो उनको या तो होता है ना, जब जब आप कोई बड़ा क्रिमिनल एक्ट करते हैं, अब ये लोग जो थे ये कोई कोई पेशावर क्रिमिनल्स थे नहीं, ये तो नबी के बेटे थे है ना, और मुसलमान थे मोमिन थे, लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जो है ना कोई करता है कोई इस किस्म का क्रिमिनल एक्ट, तो फिर तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं है ना, और फिर दिमाग हो जाए ना, फिर वो सुनसा हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं समझ में आ रही होती है कि क्या बहाना बनाए, तो जो समझ में आया बस बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लगता है मुझे। अच्छा पिछली पिछली आयतों में मजकूर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस की गुफ्तगू शुनीद शुनीद के बाद बिल आखिर उनको एक गैर आबाद कुएं में डाल दिया, और वालिद को आकर ये बताया कि उनको भेड़िया खा गया। मजकूर उस सदर आयात में अगला किस्सा इस तरह जिक्र किया गया है, वजाउ अला कमीज ही बेदमन कर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठा खून लगा कर लाए थे ताकि वालिद को भेड़िए के खाने का यकीन दिलाए, तो मगर अल्लाह ताला ने उनका झूठ जाहिर करने के लिए उनको इससे गाफिल कर दिया कि कुर्ते पर खून लगाने के साथ उसको फाड़ भी देते जिससे भेड़ियों का खाना साबित होता। उन्होंने सही सालिम कुर्ते पर बकरी के बच्चे का खून लगाकर बाप को धोखे में डालना चाहा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सही सालिम देखकर फरमाया कि मेरे बेटों, ये भेड़िया कैसा हकीम और अकलमंद था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से नहीं फटा, ठीक है। तो अकल में तो पट्टी पड़ जाती है, लेकिन कौन डालता है अकल पे, कौन कौन पट्टी बांधता है अकल पे, अल्लाह ताला पट्टी बांधते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला को जब कोई चीज जाहिर करनी होती है ना तो वो फिर करते हैं, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और जब कोई चीज छुपानी होती है वो भी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब यूसुफ कहाँ गए, कहाँ पर है, अल्लाह को छुपाना था याकूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने वो यूसुफ की जो रीह यूसुफ है, यूसुफ की खुशबू नहीं पहुंच रही है,
हाँ
जी बाद में पहुंच गई यूसुफ की खुशबू, है ना। आखिर में क्या आता है कि वो लेकर के कुर्ता लेकर आ रहे हैं और इनको दूर से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अभी करीब में कुएं में पड़े हुए खुशबू कोई नहीं आ रही, अल्लाह ताला नहीं आने दे रहे खुशबू, ठीक है। और उसी तरीके से झूठ एक्सपोज यहाँ पे करना था, अल्लाह ताला ने जो है वो इनसे ऐसा ब्लंडर करवा दिया, ब्लंडर अल्लाह ताला ब्लंडर करवा देते हैं, ठीक है ना। सारा जो है ना मसला यही है कि करते अल्लाह ताला है, लेकिन जो गफलत में पड़ा हुआ होता है यानी गुनाहों में जो पड़ा होता है ना, तो उसकी जो है ना वो आई साइट जो है वो वीक हो जाती है, उसकी आई साइट जो है ना वो क्या कहते हैं दूर दूर की आई साइट वीक हो जाती है, उसको अल्लाह ताला नजर ही नहीं आ रहे होते हैं। अब वो हर चीज में जो है ना वो इंसानों को ढूंढ रहा होता है। अच्छा उसने मुझे मेरा मेरा भांडा फोड़ दिया, उसने जो है ना वो मेरी शिकायत लगा दी, ठीक है ना, उसने जो है वो घर की बात बता दी हजरत को जा करके, है ना। ये गुनाहों में पड़ा हुआ इंसान होता है, ठीक है ना, जिसकी निगाह जो है ना वो अल्लाह तक नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि उसने अपने गुनाहों की वजह से अपनी आई साइट खराब करवा ली होती है, ठीक है ना। अब वो जो है ना वो इंसानों के पीछे पड़ा हुआ होता है। हजरत को क्यों बताया, अब्बू को क्यों बताया, अम्मी को क्यों बताया, फलाने को क्यों बताया, है ना। तुम्हारी आंख क्यों इतनी जो है वो कमजोर हो गई है कि तुम्हें ये नजर नहीं आता कि अगर अल्लाह ना चाहते तो तुम्हारा भांडा कोई नहीं फोड़ सकता था, अगर अल्लाह ताला ना चाहते तुम्हें एक्सपोज करना तो किसी के बस में नहीं था कि वो तुम्हें तुम्हारा पोल खुल जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे इंसान को अल्लाह ताला नजर नहीं आ रहा होता, और जिसको नजर आ रहा होता है ना तो जब उसका भांडा फूटता है ना तो फिर वो इंसानों के गले नहीं पड़ता, बल्कि वो अल्लाह ताला से माफी मांगता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस सालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जिसकी नजर अल्लाह पे होती है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की नजर अल्लाह पे थी, अदर यूनुस यूनुस अलैहिस्सलाम की नजर अल्लाह पे थी, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम तो अन ज़लमती नफ्सी, ठीक, मैंने अपनी जान के ऊपर खुद जुल्म किया, ठीक है। ये फर्क होता है बस, वरना ऑल केसेस फाइले हकीकी तो अल्लाह ही है, ठीक है। अब जिसकी नजर अल्लाह तक लग गई तो फिर जब वर्ल्ड इवेंट्स ऐसे होते हैं तो उस वक्त भी उसको अल्लाह नजर आ रहा होता है, और जिसकी नजर जो है ना वो छोटे इवेंट्स में अल्लाह तक नहीं पहुंची तो वो वर्ल्ड इवेंट्स में भी दूसरों ही के तमाशों में लगा रहता है, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, और वो क्यों नहीं हमारी मदद करते, और वो क्यों नहीं हमारी मदद करते, और वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं, वो ये हैं वो हैं, ठीक है। तो फर्क साफ जाहिर है अगर हम देखना चाहें तो। आगे फरमा दिया कि बस ये पैराग्राफ करके खत्म कर देते हैं। इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम पर उनकी जाल साजी का राज फाश हो गया, और फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तआनु अला मा तसिफून, यानी यूसुफ को भेड़िया ने नहीं खाया बल्कि तुम्हारी नफूस ने एक बात बनाई है, अब मेरे लिए बेहतर यही है कि सब्र करूं, जो कुछ तुम कहते हो इस पर अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ताला ने ना मेरे रास्तों को रोक दिया है यहाँ पर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एनी मोर, मैं इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकता, मुझे मना कर दिया गया है, मैं तुम्हें सजा भी नहीं दूंगा, मुझे इससे भी मना कर दिया गया है, बस मैंने तो फसबरुन जमील वल्लाहु मुस्तआन। असबाब अगरचे के सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है असबाब इख्तियार करना फिर उसके बाद तवक्कुल करना, लेकिन जब अल्लाह ताला असबाब को मादूम कर देते, असबाब को बेअसर बना देते हैं या अपना हुक्म कि बस नहीं तुमने असबाब इख्तियार नहीं करने, अब क्या करे बंदा, अब तवक्कल, अब अगले स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाए, ठीक है ना, बाईपासिंग या जंपिंग ओवर असबाब डायरेक्ट मुसब्बिहुल असबाब तक पहुंच जाए। जब असबाब आपके ऊपर बंद कर दिए गए, मना कर दिए गए, या आपके लिए उल्टा नुकसानदेह हो गए वो असबाब, तो फिर मुसब्बिहुल असबाब, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर ऐसा ही किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं, अगर किसी को कोई सवाल वगैरह कुछ है तो। नजर लग गई किसी की, या जादू हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इसमें फिर तफसील होती है कि क्या वाकई नजर लगी या आप आपकी नजर लगी हुई है किसी के ऊपर, असल में आपको नजर नहीं लगी, या आपकी किसी पे नजर लगी हुई है असल में। तो ये देखना पड़ता है कि कोई बच्चा बीमार हो गया तो क्या बच्चों को नजर लग गई इस वजह से वो बीमार हो गया, या ये कि आपकी नजर किसी के ऊपर लगी हुई है इस वजह से आपको लग रहा है कि बच्चे के ऊपर नजर लग गई। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है। नजर जो है ना कि हक पर, तो नजर लगना तो हक है, लेकिन क्या आपके सिचुएशन में नजर लगी है, किसकी नजर लगी है, आपकी नजर लगी है कि किसी और की नजर लगी है। हर मुसीबत में कहते हैं नजर लगी, तो वो तो आदत है, बस कहने को तो आदत वाले लोग कुछ भी अलग कहते रहते हैं ना, तो उससे हदीस की नफी की जा सकती है कि अलाइन, और ना जो है वो उनकी हर बात का एतबार किया जा सकता है कि हर बार मसला जो है वो नजर की वजह से हो गया। नहीं, गलतियां भी तो होती है ना, नजर लग गई तो भाई आपने जो है वो नजर लगवाई भी तो है ना, फेसबुक के ऊपर तस्वीरें डाल डाल करके और अपने बच्चों की तस्वीरें जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल कर करके स्टेटस पे तस्वीरें लगा रहे हैं और हर जगह तस्वीरें लगा रहे हैं। तो भाई आप कह रहे हैं आप बैल मुझे मार, अब बैल जब मारता है तो कहते हैं क्यों मारा, राइट? तो भाई आपने क्यों बैल के सामने जो है वो अपने बच्चों को बिठा दिया, तो वो तो मारेगा। तो यही मामला जो है नजर लगवाने का, हम खुद लगवाते हैं अपने अपने आप को अपनी नजर, यानी दूसरी दुनिया की नजर। बहरहाल ठीक है, तो कोई और अगर सवाल नहीं है तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।